नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर गंवाया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक करें और उनके प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाएं। और प्रदेश सरकार ने पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में उचित सुधार प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। और अब समाचार विस्तार से। संविधान 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सके। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। विधेयक पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। इस विधेयक के पारित न होने के कारण परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 सहित अन्य दो विधेयकों को पारित करने के लिए पेश नहीं किया गया। लोकसभा की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधेयक पारित न होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन न करके ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है।
ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देके ही रहेंगे आगे।
केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रदेश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक 5 किलो वाले 16,50,000 से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
घरेलू एलपीजी के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है। 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 79 लाख से अधिक 19 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि 21वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का युग है और इन्हें अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों का समावेश उत्तराखंड के छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। वो देहरादून में आयोजित शिक्षा पर एआई के प्रभाव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक करें और उनके प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड के शिक्षक और छात्र मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि एआई के माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है, विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में यह सहायक सिद्ध होगा। साथ ही एआई भाषा की बाधाओं को दूर कर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को सशक्त बनाने का अवसर भी प्रदान करता है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर के यातायात संतुलन को लेकर देहरादून गतिशील प्लान की बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने सप्ताहांत और चारधाम यात्रा के कारण अत्यधिक यातायात दबाव रहेगा। इसके लिए उन्होंने लगातार देहरादून के यातायात व्यवस्था में उचित सुधार प्रबंध करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आड़त बाजार की रजिस्ट्री एवं मुआवजा के कार्य को आगामी 15 मई तक पूरा किए जाने पर जोर दिया। साथ ही निरंजनपुर मंडी को भी शीघ्र शुरू कराने के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के लिए तत्काल एक साइट सिलेक्शन कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई आगामी 5 वर्षों 2026 से 2031 के कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों के विजन पर आधारित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया जाना सराहनीय पहल है। यह पुस्तिका राज्य में बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सशक्त और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की संभावनाओं एवं विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा करने में यह मास्टर प्लान पुस्तिका अहम भूमिका निभाएगी। पिथौरागढ़ में नशा मुक्त समाज और बाल विवाह की रोकथाम पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिले में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और बाल विवाह की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समेत संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि नशे के खिलाफ गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और स्कूल कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सभी को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जो है जो यहाँ पर आज संपन्न की गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा पार्टिसिपेशन इसमें किया गया। एनजीओ के भी कुछ मेंबर्स थे, वो भी आए थे और पूरे जनपद के लिए एक प्लानिंग भी हम लोगों ने चौकआउट की है। उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है और इसको हम और एग्रेसिवली इसमें फोकस करेंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे और पुलिस के द्वारा भी इसमें लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। हाँ, बाल विवाह के संबंध में भी क्योंकि गवर्नमेंट से भी निर्देश इसमें प्राप्त हुए थे, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में क्योंकि ज्यादा विवाह होते हैं तो इसमें सारा सिस्टम जो हमारा वो एक्टिवेट रहेगा। सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि जनपद के अंतर्गत कोई भी बाल विवाह न होने पाए और जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो भी निरंतर चलते रहें ताकि सभी लोग जागरूक हों और इस चीज से दूर रहें।
खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत अस्मिता अंडर 16 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बागेश्वर जिले के नुमाइशखेत मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में 6 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के बारे में जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव नीरज पांडे ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है।
खेलो इंडिया के तहत अंडर 16 बालिकाओं का यह प्रतियोगिता पूरे उत्तराखंड में 5 डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर भी है। तो ये उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन व जिला फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। ये 11 साइड प्रतियोगिता है तो इसको नुमाइशखेत में ही हमने आयोजित किया है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को पहली बार यहाँ पे आयोजित हो रही है। इससे पहले अंडर 13 हुई थी, 7 साइड हुई थी, तो अभी यह प्रतियोगिता लीग और इसके बाद तुरंत फाइनल होगा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है, इसमें 6 टीमें प्रतिभाग कर रही है।
देहरादून जिला प्रशासन ने पर्यटन नगरी मसूरी को अधिक सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से स्कूल से सड़क तक हरियाली अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी राहुल आनंद की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह वे अपने परिसर को स्वच्छ और हरा भरा रखते हैं, उसी प्रकार स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित करें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर नियुक्ति के लिए चयन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी से प्रत्यावेदन देने और कमीशन उस प्रत्यावेदन पर कानून के मुताबिक 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। और अब एक समाचार आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण और परसीमन विधेयक को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरा। इसी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर मिली शिकायतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक्शन से संबंधित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, बैठक छोड़ सीधे मौके पर धमके मुख्यमंत्री। चारधाम यात्रा को लेकर दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज से केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया होगी शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर गंवाया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक करें और उनके प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाएं। और प्रदेश सरकार ने पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में उचित सुधार प्रबंधन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।